सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। जैसा कि आप जानते हैं, कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर की संरचना स्वस्थ मन से होती है। अगर हमारा मन स्वस्थ है, मन तंदुरुस्त है, तो शरीर बीमार होते हुए भी यथार्थ काम करता रहता है। तो ऐसी कौन सी बातें हैं मन की जिन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है? हमारे कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो हम सबके मन को घर कर बैठे रहते हैं, जैसे कि तनाव है, स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, एंगर है, फियर है, गिल्ट फीलिंग है। ऐसे इमोशंस हम सबके मन को पूरे दिन कभी कभी तंग करते हैं। तो क्यों ना इन इमोशंस के बारे में हम बात करें और एक ऐसा उपाय ढूंढें कि हम इमोशंस पर कंट्रोल करें तो हमारी जिंदगी सुखमयी हो जाएगी। एक ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन है तनाव, स्ट्रेस, जो आज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। आज हम चर्चा करेंगे स्ट्रेस के बारे में। हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गिरीश पटेल को। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार।
डॉक्टर साहब एक फेमस साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 30 वर्षों से मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं ब्रह्मा कुमारी इसके साथ। तो डॉक्टर साहब, स्ट्रेस के विषय में आपके साथ हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। हम पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि स्ट्रेस आखिर होता क्या है?
आज देखो तो दुनिया में हर एक को, छोटा बड़ा, गरीब अमीर, सभी को कोई ना कोई रूप से टेंशन है। करीब 3 साल पहले मैं किताब लिख रहा था, स्ट्रेस फ्री लिविंग इन 21st सेंचुरी। तो करीब 4-5 घंटा लिखने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। तो जब फ्लैट से बाहर आया तो करीब 2.5-3 साल का बच्चा खेल रहा था। मैंने मन को हल्का करने के लिए उससे बात करना शुरू की, तो बोले, अंकल मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं बहुत टेंशन में। तो तभी मुझे लगा कि देखो, इतना छोटा सा बच्चा भी न जाने उसको क्या टेंशन।
हर व्यक्ति को, चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी न किसी प्रकार का तनाव जरूर होता है।
और वर्तमान समय भी ऐसा आया है। वास्तव में कहते हैं कि 17वीं सदी वो विश्वास की सदी थी, कि तब सभी को कोई ना कोई रूप से आध्यात्मिकता में विश्वास था, फेथ था। 18वीं सदी को तर्क की सदी माना गया है, कि तब लॉजिकली सोचने लगे, साइंटिफिकली सोचने लगे। 19वीं सदी को प्रगति की सदी माना है, कि तब साइंटिफिक प्रोग्रेस हुआ। और 20वीं सदी को कहा है कि स्ट्रेस की सदी है, एज ऑफ टेंशन। और अब हम 21वीं सदी में तो टेंशन और भी बढ़ रहा है। अगर हम आंकड़ों को भी देखें, स्टैटिस्टिक्स को देखें, तो भी आने वाले 12-13 वर्षों में डिप्रेशन सबसे सेकेंड कॉमनेस्ट बीमारी हो जाएगी। हार्ट डिजीज के बाद सबसे ज्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार होंगे। तो इट कैन बिकम एज ऑफ डिप्रेशन। ऐसा भी कहा गया है कि तनाव इतना बढ़ेगा कि 21वीं सदी वह एज ऑफ पैनिक बन जाएगी।
फियर, हर व्यक्ति में किसी ना किसी प्रकार का डर बैठा हुआ है।
और एवरी टाइम नो यू विल हैव अ सॉर्ट ऑफ अ पैनिक।
तो डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए कि तनाव हम सबके अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, मैं समझता हूँ जो दर्शक देख रहे होंगे किसी ना किसी प्रकार के तनाव से ग्रसित होते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन तनाव क्या होता है? हर व्यक्ति कई बार यही नहीं समझ पाता कि क्या मुझे स्ट्रेस है। वो उसके पॉजिटिव चीज को ही लेकर चलता रहता है कि नहीं नहीं, ये एक नॉर्मल रूटीन बन जाता है। तो तनाव एक आम व्यक्ति के लिए स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। क्या आप बताना चाहिए?
हेंसेल, कि जिन्होंने काफी बेसिक रिसर्च की है, जिनको हम भीष्म पितामह भी कहेंगे स्ट्रेस की रिसर्च का, तो उन्होंने प्राणियों पर काफी प्रयोग किए, मानव पर भी कुछ प्रयोग किए, और फिर यह बताया कि स्ट्रेस इज अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू द डिमांड मेड अपॉन इट।
डॉक्टर साहब, ये मुझे और आपको तो अच्छी तरह समझ में आ गया, लेकिन एक आम व्यक्ति जिसको साइंस के बारे में या इतनी साइंटिफिक लैंग्वेज नहीं मालूम, उसको तनाव कैसे स्पष्ट किया जाए?
नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा मोहित, कि मैं भी अपने प्रवचनों में बताता हूं कि स्ट्रेस क्या है। कि स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ द सिचुएशन डिवाइडेड बाय कोपिंग एबिलिटी।
जी,
तो दो पहलू है। एक तो परिस्थिति का प्रेशर है, वो जितना ज्यादा होगा उतना तनाव अधिक होगा। और दूसरी बात है कि आप उसका सामना कैसे करते हैं, उसकी जो कोपिंग स्किल्स है वो आपकी कितनी है। भले हम प्रेशर को शायद कम ना कर सके, परंतु कोपिंग स्किल्स को बढ़ा सके तो भी तनाव नहीं होगा।
मतलब आप ये कहना चाहें कि परिस्थिति कोई भी आती है, तो परिस्थिति के आगे अगर हमारी स्वस्थिति ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा एनर्जेटिक है, तो परिस्थिति डाइल्यूट हो जाती है, या हमारी अपनी कोपिंग स्किल्स, हम यानी अपनी स्वस्थिति को और एनर्जेटिक पावरफुल बनाए तो स्ट्रेस हमें कम होगा।
ठीक कहा आपने।
लेकिन क्या ये इतना सिंपल, ये हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है? कई बार किसी व्यक्ति को दुख है, कई बार खुशी है, क्या सिर्फ नेगेटिव चीजें ही स्ट्रेस दे सकती हैं?
नेगेटिव चीजें स्ट्रेस देती है ऐसा नहीं, एक और सिंपल डेफिनेशन भी हमको देखनी चाहिए जी। ये जो मैंने बताया वह समझाने के लिए मनोविज्ञान की दृष्टि से ठीक है, परंतु अगर आम व्यक्ति को पहचानना है
वर्किंग डेफिनेशन,
हाँ, कि भी कब कब मुझे तनाव है, अगर इस बात के बारे में सोचना हो तो मैं और एक बहुत ही सरल सी डेफिनेशन देता हूं जी। कि तनाव कोई भी बाह्य या आंतरिक परिस्थिति है कि जिसका शरीर या मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हर एक शब्द महत्वपूर्ण है। तनाव सिर्फ बाह्य नहीं है, तनाव आंतरिक भी होता है। कि जब हमें ईर्ष्या होती है किसी की, बल बाहर से कुछ नहीं दिखाई देता, परंतु जब भी आप में ईर्ष्या का भाव निर्माण हो रहा है वह तनाव है
जी।
जब बदले की भावना अंदर में निर्माण हो रही है तो वह भी तनाव है। और दूसरी बात कि तनाव सिर्फ दुखमय परिस्थितियां नहीं है, अचानक जब कोई खुशी आ जाए तो वह भी टेंशन है। आपने भी देखा होगा कि मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट होती है, जब नाम अनाउंस होता है तब देखा होगा ना क्या होता है, आंसू आ जाते हैं, है? या तो ब्लैकआउट हो जाता है। तो इसलिए अचानक खुशी का अनुभव करना वह भी एक टेंशन।
ये तो एक एग्जांपल, या अभी आपने बताया कि एक क्रिकेट मैच भी जैसे हुआ था, फाइनल हुए थे, तो उसमें एक्साइटिंग सिचुएशंस जब आ जाती हैं तो लोगों को हार्ट अटैक तक पड़ जाता है। ये कई बार न्यूज में भी दिखाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि क्या तनाव जो है हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, ये तो हमें मालूम है, लेकिन किस प्रकार से हमारे शरीर को इफेक्ट करता है या हमारे मन को इफेक्ट करता है?
पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि तनाव हमारे शरीर में, कहते हैं कि 75 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। तो ये जो 75 ट्रिलियन कोशिकाएं, प्रत्येक पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए वह शरीर पर तो बुरा प्रभाव डालता ही है, परंतु साथ साथ मन पर भी उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है।
शारीरिक रूप में देखा जाए, हमारे शरीर के डिफरेंट अंग हैं, उन पर क्या तनाव प्रभाव डालता है?
नहीं, बिल्कुल डालता है। और जो मेजर अंग है, जैसे कि तनाव की तुरंत जो इफेक्ट है वो हमारे हार्ट पर है। आप मेरे से भी अच्छा जानते इस बात को।
हार्ट अटैक तो हम जानते
हैं, हार्ट अटैक तो है ही, परंतु हार्ट के ऊपर इमीडिएट थोड़ा भी आपने टेंशन लिया, हार्ट पर बुरा असर होता है। कहते हैं कि भी हार्ट घोड़े जैसा है और मन हमारा घुड़सवार है। तो घुड़सवार चाबुक मारेगा, घोड़ा फास्ट दौड़ेगा। तो इसे मन में थोड़ा भी टेंशन आया, तुरंत हार्ट पर इफेक्ट होती है।
पहला चाबुक हार्ट पर पड़ता है और पड़ता है। लोग कहते हैं कि दिल तेज धड़कने लग जाता है, पैल्पिटेशंस हो जाती हैं,
होती है। दूसरी तुरंत इफेक्ट होती है हमारे पाचन तंत्र पर। तनाव के कारण या तो पूरी भूख मर जाएगी या ज्यादा ही भूख लगेगी। व्यक्ति बार बार खाता रहेगा, विशेष रूप से महिलाएं जो घर में ही होती है, और जब भी उन्हें टेंशन है क्योंकि खाना वहां प्राप्त है तो बार बार खाती रहती है। वह एक तनाव की प्रक्रिया,
और ये अपने आप में और एक सिंड्रोम दे देता है। ओबेसिटी आ जाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो जाता है
जी। एसिडिटी हो सकती है,
शुगर की बीमारी भी बताया गया है कि तनाव के कारण। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो हमें मालूम है कि तनाव जिन व्यक्तियों को होता है उनमें एजिंग जल्दी होती है। जिसे कहते हैं अल्जाइमर्स नाम की डिजीज, जिसमें ब्रेन को कहते हैं खत्म हो जाना ब्रेन का जल्दी, वो जल्दी।
तो उसका भी कारण क्या है? क्योंकि तनाव की दिमाग पर असर है। और कैसे? कि जो सूक्ष्म रक्त वाहिनियां है दिमाग में जी, वो सूक्ष्म रक्त वाहिनियों पे या तो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा, वह शायद सिकुड़ जाएगी, कंस्ट्रिक्ट होगी। और दूसरा यह भी होता है कई बार तनाव के कारण, जैसे कि गुस्सा है तो वह सूक्ष्म नलिकाएं फूट भी सकती है जी। बोल तुरंत हमें पता नहीं चलता है, यहां तक कि तनाव के कारण आर्थराइटिस भी हो सकता है।
आर्थराइटिस, एस्थमा जैसी बीमारियां भी बताई गई।
एस्थमा में भी इमीडिएट जो इफेक्ट है वो तनाव
की है। एक बात में ये जो बड़ी स्पष्ट है, मेरे तो रोटे खड़े हो गए हैं सुन सुनकर, कि तनाव जो है हमारे जीवन को प्रैक्टिकली डिस्ट्रॉय कर देता है। हाँ, अगर हम इसको लंबे समय तक अपना साथी बना के रखें तो इस वक्त या तो लगता है कि या तो हम तनाव को छोड़े या वो हमें छोड़ के एकदम भागे।
इससे एक वो प्रेरणा लेनी चाहिए,
और मैं समझता हूँ कि जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे वह समझ रहे होंगे कि कितना जरूरी है तनाव को अपने जीवन से हटाना। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अगली चीज, अगला प्रश्न जो मेरे दिमाग में उठता है वो ये उठता है कि तनाव आखिर कितने प्रकार का होता है, क्योंकि मैं समझता हूं हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव से ग्रसित है, लेकिन किस फॉर्म में, उसके लिए वह तनाव क्या है, यह पहचानना बहुत जरूरी है।
बड़ा अच्छा प्रश्न है, और इसमें अगर आप अलग अलग एक्सपर्ट्स को यह प्रश्न पूछे,
जवाब
अलग लगता है कि वह उसका जो डिवीजन है, जो प्रकार है, उसको अलग रूप से डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक सरल रूप से आपको उस तनाव के प्रकार बताता हूं, कि जो आम व्यक्ति भी इसको पहचान पाएगा, वह तीन प्रकार के है। एक तो तनाव शारीरिक होता है, कि जब शरीर पर कोई दबाव आया, आप बीमार हो गए, बुखार हुई, तो तब आपको तनाव होगा। दूसरा है मानसिक तनाव
जी,
कि जो चिंता, निराशा, जलसी, बदले की भावना, ऐसी जो हम हमारी मन की अलग अलग अवस्थाएं हैं, उसके कारण तनाव होता है। और तीसरा प्रकार कहेंगे सामाजिक तनाव,
सोशल स्ट्रेस। हाँ,
बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियां हैं कि जिस सामाजिक परिस्थितियों में अगर मित्रों से हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है
जी।
तो इस प्रकार की जो बातें, वह भी सामाजिक रूप से तनाव पैदा करती है। और हम थोड़ा सा इसको बता सकते, एक तो कहते तनाव रियल है, कि रियल आपके सामने कुछ न कुछ परिस्थिति है, और दूसरा जिसे कहा एंटीसिपेटरी स्ट्रेस, कि व्यक्ति भविष्य का सोच करके तनाव में आता है। एक सरल सा उदाहरण देता हूं
जी,
कि अगर बच्चा स्कूल से 6 बजे आने वाला है, और अगर 6:15 भी बज गए तो मां टेंशन में आ जाती है। क्या होता है, भी कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा,
नेगेटिव चीज
है। हाँ, आजकल सुनते भी किडनैप तो नहीं कर लिया होगा, तो पहले ही वह एंटीसिपेशन कि भी क्या होगा, वो सोच करके व्यक्ति तनाव में आ जाता है।
डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि फिजिकल स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस है, सोशल स्ट्रेस है, मैं समझता हूं कि फिजिकल और जो सोशल स्ट्रेस है, ये सब भी एक प्रकार से हमारे मानसिक तनाव को ही बढ़ावा देते हैं, मानसिक रूप में ही अल्टीमेटली इफेक्ट आता है। जैसे आपने बताया कि एंटीसिपेटरी स्ट्रेस है, अक्सर लोग भविष्य की चिंता में, हर व्यक्ति आज ये सोच रहा है कि कल क्या होगा, एक अनसर्टेनिटी में हम लोग जी रहे हैं, और ये अनसर्टेनिटी मेरे अंदर, आपके अंदर, मैं समझता हूं हमारे सब दर्शकों के अंदर ये तनाव जरूर लाती होगी।
बिल्कुल,
ऐसे ही कुछ लोग हैं जो पुराना ही सोचते रहते हैं, उसके बारे में आप,
ये भी बात है, जैसे एंटीसिपेटरी स्ट्रेस है, ऐसे ही भूतकाल का सोच सोच करके, पास्ट की बातों को लेकर के भी हम टेंशन
हम बैठे ही रहते हैं पता,
और उसकी इफेक्ट डिफरेंट है। जब भविष्य के बारे में हम सोचते हैं तो व्यक्ति डरता है, और जब भूतकाल के बारे में हम सोचते हैं तो हम यह विचार करते हैं कि मैंने बहुत बुरा कर दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, एक पाप की भावना आती है। तो इसलिए दोनों अलग अलग डिफरेंट इफेक्ट करते हैं मन पर, और वह बहुत बड़ा टेंशन। कहते हैं कि पास्ट वह कैंसल चेक जैसा है, और फ्यूचर वो प्रॉमिसरी नोट है, पक्का नहीं कह सकते कि वह पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन वर्तमान वह रियल करेंसी है। आपके पॉकेट में 100 रुपये भी है तो आप कुछ खरीद सकते हैं, 2000 रुपये की प्रॉमिसरी नोट कोई काम की नहीं है। तो इसे वर्तमान जैसा भी है, समझना चाहिए कि भगवान की एक सौगात है और मैं खुश हूं, और हर पल को वर्तमान में बिताना भी कोई अच्छी तरह से सीख ले तो सचमुच न केवल व्यक्ति तनाव मुक्त बनेगा, परंतु उसकी कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। 21वीं सदी में कंपटीशन बहुत है, तो कंपटीशन में आपको वर्किंग एफिशिएंसी को भी बढ़ाना है, वह तब होगा अगर आप वर्तमान में जीना सीखे।
30 वर्षों से आप मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि यही एक मेडिटेशन है, एक ऐसा अस्त्र है हमारे, ब्रह्मास्त्र जिसे हम कहेंगे, जो हम इस तनाव को अपने जीवन से हटा सकते हैं, एक लाइफ में एक बैलेंस ला सकते हैं।
कहते हैं कि मेडिटेशन इज ब्रिंगिंग माइंड बैक होम, कि मन को वापस इस समय में अभी क्या कर रहा हूं, तो उसी में मन को ले आना, वह बेसिकली मेडिटेशन है।
ये आर्ट और ये टेक्निक तो डॉक्टर साहब हम और हमारे दर्शक आपसे जरूर सीखेंगे, क्योंकि यही असली आज हर व्यक्ति को जरूरत है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि अक्सर हमने आपको आपके पुराने लेक्चर्स में भी कहते सुना है कि मानव शरीर की जो संरचना है उसमें कुछ ना कुछ गलती हुई है, क्या स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वह बॉडी पर एकदम नहीं आता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में?
मैं इसलिए कहता हूं, जैसे प्रवचनों में हमारा लक्ष्य यह होता है कि लोगों को प्रेरणा मिले, अन्यथा मैंने देखा है कि परिवर्तन नहीं आता।
नहीं आता,
भले 4 दिन की भी वर्कशॉप अटेंड कर ले व्यक्ति, लेकिन वो अपने जीवन शैली में परिवर्तन नहीं लाता है। तो इसके कारण मैं ये बताता हूं कि जब भी मानव शरीर की रचना हुई तो भगवान ने गलती की है, अगर वो गलती नहीं की होती तो इस टॉक शो की भी जरूरत नहीं थी। मेरे जैसे जो साइकोथेरापिस्ट है साइकियाट्रिस्ट की भी जरूरत ही नहीं पड़ती। कि क्या गलती हुई है कि जब जब भी आपको तनाव आए, जैसे मैं आपके बारे में ईर्ष्या का विचार करूं तुरंत सरदर्द हो गया, अगर मुझे अगर गुस्सा आया हार्ट में पेन शुरू हो गया
तो वो रखेंगे
तो हाँ तो तुरंत नहीं। आज नहीं, कई लोग होते हैं कि भी जो चाय पीते हैं उनको सरदर्द हो जाता है तो चाय पीना बंद कर देता है
जी।
तो ऐसे ही अगर यह होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ है
जी।
ना कुदरत ने यह सोचा होगा कि भी मानव को तो जरूरत है, अगर ऐसा हो जाए तो कोई काम नहीं कर पाएगा
जी।
इसके कारण आवश्यकता से करीब 4 से 5 गुना ज्यादा कैपेसिटी हमारे शरीर के अवयवों को दी है। जैसे हमारे गुर्दों का ही उदाहरण हम ले लें,
सहन करने की जो दी
है। हाँ, या तो जो हमारी किडनीज है वो अगर 25% भी काम कर रही है, एक किडनी मैं डोनेट कर दूं किसको, दूसरी किडनी भी अगर आधी भी काम कर रही है तो मुझे कोई बीमारी के लक्षण नहीं होंगे। जब उससे भी कमी आती है तब बीमारी के लक्षण होते हैं। और ऐसा ही हमारे हार्ट के साथ भी है, सभी ऑर्गन्स में बहुत ज्यादा कैपेसिटी है तो इसके कारण इमीडिएट इफेक्ट नहीं होती।
क्या तनाव का कोई स्पिरिचुअल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है?
जब जब भी हमें थोड़ा भी तनाव जो हम फील करते हैं वह तो आगे की स्टेज है कि भी हमें दुख की फीलिंग होती है या निराशा की फीलिंग होती है, बस आप सिर्फ सोच रहे हैं, ईर्ष्या के बारे में आप सोच रहे हैं, अंदर में थोड़ा सा बुरा फील कर रहे हो, नेगेटिव थोड़ा सोच रहे हो, तो तब भी पहले तो उसकी आत्मा पर इफेक्ट होती है। वो ओरिजिनेट तो आत्मा में ही होती है, परंतु जैसे आत्मा से ओरिजिनेट हुई तो जो हमारी एनर्जी फील्ड है वो एनर्जी फील्ड पर उसका प्रभाव पड़ता है। और सभी में इसको माना गया, अगर हम सिस्टम्स को भी देखें तो भारत में आयुर्वेद में इसको प्राण शक्ति कहा, होम्योपैथी में इसे वाइटल फोर्स कहा गया, जो चाइनीज मेडिसिन है एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर आदि जिसमें कहते हैं कि ची एनर्जी है, मेरिडियंस है।
आपका अपना जो मेडिटेशन का एक्सपीरियंस है उसमें आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
पहले तो थोड़ा मैं ये भी स्पष्ट करूं कि मॉडर्न मेडिसिन में भी अगर देखो तो भी आज क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा हम ह्यूमन एनर्जी फील्ड के फोटोग्राफ्स भी ले सकते
बिल्कुल
हैं कि जिसमें राइट लेफ्ट और टॉप में अलग अलग लेयर्स दिखाई देती है, अंदर की जो हमारी रचना है उसमें भी परिवर्तन आता है। और उसके आधार से हम ये भी बता सकते हैं कि भले आज आपको कोई बीमारी नहीं है परंतु 5 साल के बाद ये बीमारी आपको हो सकती, यहां तक 5 साल भी नहीं है कि भी 15 या 20 साल के बाद आपको यह बीमारी होगी। जैसे डायबिटीज के बारे में अगर विचार करें कि जो कॉमन बीमारी हो रही है तो फिजिकल टेस्ट के द्वारा भी 12 साल पहले हमें यह पता चलता है, फिजिकल बॉडी में परिवर्तन आता है। जैसे कि एक है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट,
इसी तरह आप ये कहना चाहते हैं कि हम पता लगा सकते हैं कि आगे ये प्रॉब्लम हो सकता है।
तो फिजिकल में यह है, परंतु मैं ये बताना चाहता हूं कि भी ऑरा में उससे भी पहले परिवर्तन
आ जाता है।
तो इसके कारण तनाव से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए।
और मैं देखता हूं कि कई बार आम लैंग्वेज में हम कह भी देते हैं कि भाई ग्लो आपके अंदर से खत्म हो गया या क्यों ऐसे ढीले ढीले से लग रहा है।
वह बाह्य बात हुई, अगर आध्यात्मिक रूप से विचार करें, आप ये पूछ भी रहे थे, तो आत्मा की स्थिति में थोड़ा भी फर्क पड़ता है तो वो ऑरा पर इफेक्ट करता है। और ऑरा पर असर हुई तो आगे चल करके फिर हमारे जो बॉडी के केमिकल्स है न्यूरोट्रांसमीटर्स है उस पर इफेक्ट होगी और फिर अंत में हो सकता है कि 15 साल 20 साल के बाद आपको शारीरिक बीमारी होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेडिटेशन सबसे जरूरी है जीवन में, थोड़ा भी करो परंतु मेडिटेशन का अभ्यास जरूर करो ताकि ये जो मूल है बीमारियों का उस मूल को आप दूर कर सकें।
डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें बताया है कि तनाव क्या होता है, तनाव कितने प्रकार का होता है और किस तरह तनाव हम सबके शरीर को हमारे मन को शिथिल कर सकता है, खत्म कर सकता है। और आपने यह भी बताया कि तनाव को अगर हमें जीतना हो तो मेडिटेशन एक बहुत प्रैक्टिकल टूल है। अगर आप और हम मेडिटेशन सीखना चाहते हैं और तनाव के बारे में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातें, रोचक बातें सुनना चाहते हैं तो हम कल अपनी चर्चा जारी रखेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ। तब तक के लिए हम आपसे आज्ञा लेंगे। नमस्कार।
शांति हो। ये ध्वनि मंगल ध्वनि।